नमस्कार भारत, आज है 5 अगस्त दिन बुधवार। स्वागत है आपका, मैं हूँ सुशीला सिंह। मध्य प्रदेश में हरदा के नजदीक कामयानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त।
अभी ताजा जानकारी ये है कि उसमें हमको अभी 10 डेड बॉडी जलता में मिली हुई है और 3 डेड बॉडी कामयानी एक्सप्रेस खिड़की अभरंगी के बीच का ये जो सेक्शन है उसमें ये हादसा हुआ है।
कांग्रेस के निलंबित 25 सांसदों ने सोनिया के नेतृत्व में किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में अकाली दल ने केंद्र सरकार से की अलगाववादियों को जेल से रिहा करने की सिफारिश, तो विपक्ष हुआ लामबंद।
कादियों ने हर वक्त ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेली है और ये एक सॉफ्ट खालिस्तानी लाइन हर इलेक्शन से पहले लेते हैं, ये इनका नेचुरल इलेक्टोरल बेस है।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, समीर आत्मज मिश्र से। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नजदीक कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा हरदा से 25 किलोमीटर दूर खिड़किया और भिंगरी के बीच में हुआ है। भारतीय रेल के प्रवक्ता के मुताबिक एक पुल के टूट जाने के कारण यह हादसा हुआ और दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे माचक नदी में गिर गए। राहत और बचाव कार्य रात से ही शुरू हो चुके हैं और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के दो गश्ती दलों के बीच गलतफहमी की वजह से हुई मुठभेड़ में कम से कम 2 भारतीय जवानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के त्राल शहर के पास इन दोनों दलों ने एक दूसरे को चरमपंथी समझकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे ये घटना हुई। त्राल शहर चरमपंथ से बुरी तरह से प्रभावित है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यहाँ कई पढ़े लिखे नौजवान हाल के दिनों में चरमपंथी समूहों में शामिल हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए। इस घटना के बाद स्कूल के 100 बच्चों को इलाज और जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि एक बच्चे की थाली में छोटी छिपकली मिलने के बाद ये हादसा हुआ। जमशेदपुर के उपायुक्त ने इस घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। कोलंबिया में पुलिस के एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कम 16 अधिकारियों की मौत हो गई है। ये अधिकारी एक ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान पर निकले थे जब ये दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को गोली से उड़ा दिया गया, लेकिन कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने इस बात से इंकार किया है। फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा कर गिर गया। उस समय उसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये दुर्घटना है और हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कोलंबिया के रक्षा मंत्री लुइस कार्लोस विलेगास के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल में अधिकारियों ने पहली बार किसी यहूदी संदिग्ध यहूदी को प्रशासनिक हिरासत में लिया है और बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये व्यक्ति हाल के दिनों की कुछ हिंसक गतिविधियों में शामिल था। अधिकारियों ने इस बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार ने पिछले दिनों एक 18 वर्षीय फलस्तीनी बच्चे की मौत के बाद प्रशासनिक हिरासत के इस्तेमाल को बढ़ा दिया है। बच्चे की मौत के लिए राष्ट्रवादी यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। दक्षिणी सूडान में सुरक्षा बलों ने एक रेडियो स्टेशन और एक अखबार को देश में गृह युद्ध को खत्म करने की योजना का समर्थन करने के आरोप में बंद करा दिया है। फ्री वॉयस साउथ सूडान अमरीका समर्थित रेडियो स्टेशन है जो मंगलवार को बंद हो गया, जबकि द सिटीजन अखबार को एक दिन पहले ही बंद करा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों ने राष्ट्रपति साल्वा कीर और विद्रोही नेता रीक मचार को शांति समझौता करने के लिए मध्य अगस्त तक का समय दिया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जैसा कि आपने समाचारों में समीर आत्मज मिश्र से सुना, मध्य प्रदेश के हरदा के नजदीक कामयानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में अब तक 13 लोग मारे गए हैं। मैंने बस सबसे थोड़ी देर पहले भोपाल फोन कर भारतीय रेल में भोपाल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी IS सिद्दीकी से इस बारे में और जानकारी मांगी।
जानकारी हमारे पास ये है कि हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो लगभग 4 बजे तक पहुंच गई थी वहां पर, 4 से थोड़ा और पहले पहुंच गई थी। और उसमें हमारे GM श्री रमेश चंद्रा और DRM श्री आलोक कुमार भी हैं, पूरा रेलवे का अमला है लगभग 300-400 एम्प्लॉई उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अभी ताजा जानकारी ये है कि उसमें हमको अभी 10 डेड बॉडी जनता में मिली हुई है और 3 डेड बॉडी कमानी एक्सप्रेस में।
और ये जानना चाहेंगे कि ये हादसा कहाँ हुआ है?
ये हादसा जो है खिड़किया और ये का स्टेशन है खिड़किया और भृंगी, खिड़किया भृंगी के बीच का ये जो सेक्शन है उसमें ये हादसा हुआ है
जी। और अभी आप बता रहे हैं कि इतने लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, क्या कुछ पुल टूटा था? जो खबरें आ रही हैं कि पुल टूटने की वजह से जो है ये ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास?
देखिए मैम, अभी मैं वजह तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी जो पूरा हमारी प्राथमिकता है, पूरा अटेंशन रेस्क्यू के है। पहले हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं जो बहुत से लोगों को, 250 लोगों को हमारी टीम ने निकाला है, पूरा अभी उसी में लगे हुए हैं। 250 से 300 लोगों को निकाल लिया।
और कितने पटरी से उतरे हैं डब्बे, ये बता पाएंगे?
चार कोच कमाईनी के उतरे थे और 2 कोच जनता एक्सप्रेस के।
और अब जो राहत बचाव के लिए क्या पूरी टीम वहां पहुंच चुकी है, मेडिकल सेवा भी?
हाँ बिल्कुल, मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी पहुंच गई, हमारे DRM GM भी पहुंच गए और काफी पहले करीब 1.5 घंटा उनको हो गया स्पॉट पर पहुंच हुई। रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लाइट वाइट का सब व्यवस्था हो गई, खाने पीने की व्यवस्था है। इनफैक्ट जो लोग उसमें से निकाले उनका भी 4 डॉक्टरों की एक टीम है जो हरदा की है, बाकी मेडिकल वैन में जो डॉक्टर की टीम गई है भोपाल मंडल से, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया है, वो लोग भी लगे हुए हैं
जी। ऐसी खबरें आ रही थी कि पटरियों पर पानी भरा हुआ था।
पटरी पे पानी जरूर था, इनफैक्ट बिल्कुल सही बात है, लेकिन ट्रेन नहीं डूबी है, ड्रिल हुई है, कुछ ड्रिल हुए हैं, जमीन पे उतरे हैं। जमीन पे चूंकि 1.5 से 2 फीट 3 फीट पानी था, तो वो जब ड्रिल हुआ गिरा तो पानी में ही गिरा, मतलब वो डिप होने वाली बात नहीं है
जी, मतलब ये डूबे नहीं हैं, जो डिब्बे हैं वो पानी में नहीं डूबे हैं, बट पानी थोड़ा बहुत रहा होगा वहाँ पर, आपका ये कहना है?
बिल्कुल
जी। और ये कितने बजे हादसा हुआ है?
ये लगभग 12:45 के लगभग, 11:40-11:45
उजाला हो रहा है, तो आपको लगता है कि और मुस्तैदी से तेजी से काम हो पाएगा राहत का?
काम तो तेजी से शुरू से ही है, हम लोगों की फ्लड लाइट वगैरह उधर थी, अभी उजाला हो जाएगा तो और काफी क्लियर हो।
तो हरदा के नजदीक कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। ये थे जनसंपर्क अधिकारी IS सिद्दीकी और मैंने अब से थोड़ी देर पहले ही घटनास्थल पहुंचे भारतीय रेल के भोपाल डिवीजन के DRM आलोक कुमार से पूछा कि वहां क्या स्थिति है।
मैं अभी भी घटनास्थल पे हूं और यहां पर जो एक स्ट्रीम आती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से फ्लैश वाटर आने की वजह से उसने करीब 150 मीटर ट्रैक के बीच में से सारी मिट्टी निकाल दी, और मिट्टी निकलने से जब मिट्टी नहीं रही ट्रैक के नीचे तो ट्रेन टॉपल हो गई। ये जो है स्टेशन है भृंगी स्टेशन के पास।
आप यहाँ पहुंचे घटनास्थल पर क्योंकि रात में यह हादसा हुआ था, कितने डिब्बे जो हैं वो डिरेल हुए थे और क्या देख पा रहे थे आप वहाँ पर?
यहाँ पर टोटल जो है 19 डिब्बे हैं, डिरेल नहीं है, मैं कहूँगा टॉपल हुए हैं अर्थ निकलने के। तो उसमें क्या हुआ है कि ट्रैक के नीचे से अर्थ निकल गई, देर वॉज नो सपोर्ट, तो नेचुरली वजन की वजह से जो गाड़ी पास हुई वो इट हैज टॉपल्ड ऑन वन साइड एंड अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम दैट ऑल द डेथ अपीयर टू हैव बीन टेकन ड्यू टू ड्राउनिंग इन वाटर।
अच्छा, जिन लोगों की भी मौत हुई है वो डूबने की वजह से हुई है, तो पानी कितना गहरा है वहाँ पर, अब क्या देख पा रहे हैं?
पानी तो उतर गया है, इट इज ए स्मॉल स्ट्रीम बट फ्लैश वाटर हैड कम
जी। तो ये लोग जो मरे हैं क्या माचक नदी में डूबने से मरे हैं?
हाँ, ब्रिज के नीचे से, ब्रिज के साइड पे से सारी अर्थ निकल गई, ब्रिज इंटैक्ट है, ब्रिज के दोनों तरफ की जो सपोर्ट है उसके नीचे से अर्थ निकल गई और जो कोच था वो नदी में चला गया, एक कोच, और ज्यादातर मौत उसी कोच के अंदर जो लोग बैठे थे उनके डूबने से
जी। और ये अभी खबरें आ रही हैं, हमने जो बात की थी सिद्दीकी साहब से, उनका कहना था कि 13 मौत हुई है, तो ये जो जनता
13 की फिगर है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो, क्योंकि हो सकता है उसमें काउंटिंग में कोई डुप्लीकेशन हो गया हो, और एक बार सारे कोच जिस अवस्था में पड़े हैं वो जो है वेरीफाई होने के बाद ही ये पता लगेगा, बट फिगर 10-11-12 के आसपास ही
जी। और पहले कमाईनी एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त और उसके बाद जनता एक्सप्रेस हुई जी?
नहीं, दोनों गाड़ियां अप में एक डाउन में साथ साथ उस ब्रिज से पास हो रही थी, दोनों अलग अलग लाइनों पे और दोनों की दोनों एक साथ करीब करीब एक ही अवस्था में।
और कितने लोगों को जो है बचा लिया गया है
यहाँ पर? तो दोनों गाड़ियों में मेरा अंदाजा है, एक में 23 कोच थे, एक में 24 कोच थे, तो दोनों गाड़ियों में मिला के 1,500 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से बाकी सबको बचा लिया गया है। लोग ठीक हैं, या तो थोड़ी बहुत घबराहट की स्थिति में कुछ लोग थे, बाकी लोगों को चोटें नहीं लगी है। और जो मैंने बताया कि मौत जो हुई है ज्यादातर पानी में डूबने की वजह से हुई है, इस वजह से बाकी लोगों में जो है चोटों वाली स्थिति तो नहीं है।
तो कमायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 13 लोग मारे गए हैं। ये थे भारतीय रेल भोपाल डिवीजन में DRM आलोक कुमार। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के दो गश्ती दलों में के बीच गलतफहमी की वजह से हुई मुठभेड़ में कम से कम 2 भारतीय जवानों की मौत हो गई है। इस बीच पुलिस ने चरमपंथियों से संबंध रखने के आरोप में एक प्रवासी कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मैंने 2 जवानों की मौत के बारे में श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से और ब्यौरा मांगा।
त्राल क्षेत्र ऐसा है जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में है। ये एक पहाड़ी और जंगली इलाका है, लेकिन बस्तियां भी आबाद हैं क्षेत्र के एक हिस्से पे। लेकिन अक्सर जो है आर्मी की पेट्रोल पार्टीज 2 छोरों से आके पेट्रोलिंग करके वापस जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमें सैनिक अधिकारियों और पुलिस से पता चला है कि 42 राष्ट्रीय राइफल 2 यूनिट्स, एक यूनिट और एक सब यूनिट जो है एक साथ पेट्रोलिंग पे जंगली एरिया की तरफ गए हैं। तो उन्होंने अचानक एक जगह एक आमना सामना हुआ है एक दूसरे का उनको, तो उन्होंने एक दूसरे पे फायरिंग की है। पहले तो एक जवान की मौत हो गई और बाद में ये पता चला कि जो घायल जवान हुए थे वो भी, उनकी भी मौत हो गई है। तो इसकी एक खास वजह ये है कि कुछ दिन पहले त्राल के जंगली इलाकों में जो सक्रिय मिलिटेंट्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, उसमें खास तौर से बुरहान है जो कमांडर है दक्षिणी कश्मीर के, उन्होंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आर्मी वर्दी पहन रखी थी। तो इस तरह से जाहिर है जब वो वीडियो आ गई तो उसके बाद एक सुरक्षा अलर्ट किया गया, तो इंटेलिजेंस की तरफ से वो वीडियोस जो हैं वो फील्ड यूनिट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो जाहिर है कि जो पेट्रोल पार्टी होती है उनके जहन में ये होता है कि घने जंगल में पौधों और वेजिटेशन के पीछे से जो भी कोई मूवमेंट नजर आएगी तो उसमें वर्दी पहने हुए कोई भी शख्स जो है वो चरमपंथी के तौर पर मिस्टेक हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये कारण हो सकता है एक दूसरे पर फायरिंग।
कश्मीर का त्राल क्षेत्र ऐसा है जहां पर चरमपंथी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और जैसे कि आपने एक पुलिस अधिकारी से भी बात की है, उसने ये कहा है कि अब बहुत से युवा इन चरमपंथी समूह में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि चरमपंथ वहां फिर से दस्तक दे रहा है?
एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों से त्राल और सोपोर, त्राल तो दक्षिणी कश्मीर में है और सोपोर उत्तरी कश्मीर में है, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे चरमपंथियों की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। तो इसकी कई वजहें बताई जाती हैं। एक तरफ से सुरक्षा एजेंसियां ये कहती हैं कि जो सीमा पार चरमपंथ का आर्किटेक्चर है, यानी टेररिज्म आर्किटेक्चर है, वो अभी इंटैक्ट है, लॉन्च पैड्स हैं और पाकिस्तान का समर्थन यहाँ के चरमपंथियों को जारी है। और अभी हाल जो है एक खबर ये सामने आई है कि एक डॉक्टर जो UK में सेटल्ड थे, फिजियोथेरेपिस्ट, उनको गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और उनकी लीड पर जो है कई 6-7 और लड़कों को गिरफ्तार किया। इनका कहना है कि वो यहाँ पे चरमपंथियों की गतिविधियों को ज्यादा सक्रिय करवाना चाहते थे, उनकी फाइनेंसिंग कराना चाहते थे। तो इस तरह से एक तो सुरक्षा एजेंसियों का स्टैंड है और दूसरी तरफ से ये अलगाववादियों का स्टैंड है और मानव अधिकारों के लिए सक्रिय गुटों का स्टैंड ये है कि बहुत ज्यादतियां हुई हैं 2010 में, जब यहाँ पे जो है फेक एनकाउंटर्स के विरोध में एक आंदोलन चला था, तो उसमें पुलिस की तरफ से बहुत ज्यादतियां हुई हैं और उसकी वजह से जो युवक हैं वो चरमपंथियों की सफों में शामिल हो रहे हैं।
सेना के 2 गश्ती दलों में गलतफहमी की वजह से हुई मुठभेड़, 2 जवानों की मौत। ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। कांग्रेस के 25 सांसदों ने निलंबन के खिलाफ संसद भवन परिसर में कल धरना किया और विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रखने की बात कही। संसद की लगातार बाधित हो रही कार्रवाई से नाराज स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 25 सांसदों को निलंबित कर दिया था। इस फैसले के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी एकजुट नजर आई, और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना था कि वो भ्रष्टाचार, व्यापम और ललित गेट मामले पर पीछे नहीं हटेंगे और सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहेंगे। पूरे घटनाक्रम पर प्रगति सक्सेना की ये रिपोर्ट।
मन की बात बंद करो, काम की बात शुरू करो, जैसे नारों के साथ कांग्रेस ने कल मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थी। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद, AK एंटनी और आनंद शर्मा जैसे पार्टी के बड़े नेता बांह में काली पट्टी बांधकर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के फैसले का विरोध कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी,
सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है, और मेरे हिसाब से लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आज का।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले और ललित मोदी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कथित दागी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार पर दबाव बनाती रहेगी।
हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल हैं, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे, हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा,
नकारात्मक और अवरोधात्मक राजनीति करके देश के विकास के मार्ग पे रोड़ा अटकाने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर से उसकी कड़े शब्दों में संसदीय दल ने निंदा की है।
वहीं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में उसकी जबरदस्त हार की याद दिलाई और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी कांग्रेस के कारनामों की पूरी सूची है।
हमारे पास तो कांग्रेस के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा भरा हुआ है। बहस से क्यों भाग रही है? बहस निकलेगी तो कांग्रेस पार्टी की परेशानी बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो हार गए हैं। इस देश में एनडीए का शासन है, भाजपा का शासन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री।
कांग्रेस का कहना है कि कल की तरह आज भी उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राजनीति के गलियारों में कल इस तरह की चर्चा भी रही कि आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती हैं, और ऐसा हुआ तो लोकसभा से निलंबित किए गए कांग्रेस के 25 सांसद सदन की कार्यवाही में दोबारा भाग ले सकेंगे। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के इस्तीफे पर अड़ी है, उससे लगता नहीं है कि निलंबन रद्द हो भी जाए तो भी संसद की कार्यवाही चल पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो टूक शब्दों में कह चुकी है कि उसका कोई नेता इस्तीफा नहीं देगा। संसद के मानसून सत्र में बीते दो हफ्ते से जारी हंगामे की वजह से संसदीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौजूदा सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से 13 अगस्त तक जारी रहेगा।
तो संसद में कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विरोध प्रदर्शन कमान संभाली और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये थी प्रगति सक्सेना की रिपोर्ट। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोनिया गांधी राहुल गांधी से आगे नजर आई, लेकिन क्या पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर अभी भी संशय बना हुआ है? क्या राहुल गांधी नेतृत्व के मुद्दे पर पिछड़ गए हैं, और कांग्रेस संसद की कार्यवाही को इस तरह आखिर कब तक रोक पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी अविनाश दत्त ने बात की वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से।
सोनिया गांधी फिर से अगर सामने आके अटैक कर रही है तो एक बात तो अभी साफ है कि पार्टी में अभी पूरी क्लैरिटी नहीं हुई है कि ये काम पूरी तरह राहुल को सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है कि नहीं है, या सोनिया इंचार्ज है, क्या एग्जैक्ट डिविजन है जिसपे कई बारी विचार हुआ है, सवाल उठे हैं, उस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है पार्टी में। राहुल वापस तो आ गया है, और वापस आके अगर वो लड़ाई लड़ रहा था तो फिर से एक सोनिया को दावा बोलने की क्यों जरूरत पड़ी? सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप है, वो पूरी तरह से पार्टी अब तक नहीं सेटल कर पा रही है। ये राहुल को लेकर 10-15 साल से चली आ रही है ये बात, क्योंकि आप अगर क्लियर डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो सोनिया ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में लग जाए या पीछे से गाइडेंस दे, पर अगर मोदी पे अटैक दोनों ने करना है, और अभी भी कई स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, या साल डेढ़ साल दो साल में जहाँ पे लीडरशिप के सवाल अभी भी सामने खड़े हुए हैं अमरिंदर को लेके पंजाब में, तो वो जब तक सेटल किए नहीं जाते हैं इस तरह से कि ऊपर से नीचे तक चेन ऑफ कमांड क्लियर हो, तो ये सवाल उठे रहेंगे पार्टी में। कांग्रेस के लिए अभी सबसे जरूरी काम है कि मोदी को आप कमजोर करिए। कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है जो नरेंद्र मोदी के टक्कर का है। आप चाहे सोनिया की बात कर ले, राहुल की बात कर ले, वो सवाल सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड या लीडरशिप का नहीं है। आज जो पार्टी कांग्रेस बन गई है वो बीजेपी को टक्कर दे नहीं सकती है। जो मीडिया में आज प्रेस करा जा रहा है कि ये सोनिया का एग्रेशन और राहुल का एग्रेशन, मैं कहता हूँ एक्चुअली इसे दूसरी तरफ से देखना चाहिए। इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस कि अभी तक आपका लीडरशिप क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है। जो चीज प्रेस में अब वीकनेस मानी जा रही है कि आप स्टेट्स में जाके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली कांग्रेस की स्ट्रेंथ है। वो एक न्यू रियलिज्म है कि आप उसके बिना सक्सीड नहीं कर सकते। आपको एलाइज कि सबसर्वियंट या साथ लेके चलना पड़ेगा, वो अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूँ सिग्नल को मिसरीड किया जा रहा है। सोनिया का वक्तव्य इज अ साइन ऑफ कांग्रेस वीकनेस।
ये बताएं कि कांग्रेस जिस तरह से जो उसकी रणनीति रही है पार्लियामेंट को न चलने देने की और रोक देने की, अभी साल भर है, पहला साल है, चार साल और, क्या संसद इस तरह से चला सकेंगे वो? हर बार पार्लियामेंट में जाके यही कर सकेंगे वो? और ये क्या ठीक है उनकी राजनीतिक सेहत के लिए?
देखिए, इस सेशन से आगे ये स्ट्रेटेजी नहीं चल सकती है, और ये पार्लियामेंट पे निर्भर नहीं होगा, बहुत कुछ बिहार इलेक्शन पे निर्भर होगा। बिहार इलेक्शन अगर मोदी गवर्नमेंट हार जाती है तो एक अलग सिलसिला चालू हो जाता है, अगर जीत जाती है तो एक जो कॉन्फिडेंस आएगा उसके सामने, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करे तो ये नहीं हो सकता है। तो मेरे को लगता है इस स्ट्रैटेजी के कुछ फायदे रहे, क्योंकि बीजेपी ने भी यही कहा था। आज लैंड बिल में चेंज आ गया है, कांग्रेस उसका क्रेडिट क्लेम कर सकती है, जीएसटी फंसी हुई है, पर ये इस सेशन के आगे जाके इसे सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। ये इसके आगे कांग्रेस को फिर से सोचना पड़ेगा, पर मेरे को लगता है ये सोच सारे बिहार इलेक्शन के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी।
वरिष्ठ पत्रकार हरतोष बल से बात कर रहे थे अविनाश दत्त। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और समीर मेरे सामने अखबारों का ढेर लेकर पहुंच गए हैं स्टूडियो। समीर, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी, आज के अखबारों में तो चर्चा ज़्यादातर कल संसद में जो कुछ हुआ, संसद के बाहर भीतर तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 25 सांसद उनको
निलंबित कर दिया गया था
5 दिनों के लिए, तो उसकी चर्चा है। कई पार्टियों के साथ कांग्रेस ने जो है वो विरोध जताया। संसद में धरने पर सोनिया, राहुल, अमर उजाला लिखता है। नवभारत टाइम्स ने बड़ी दिलचस्प हेडिंग दी है, इस्तीफे मांगते रहेंगे चाहे संसद से बाहर फेंक दें। और ये लगभग सभी अखबारों में ये खबर प्रमुखता से छपी हुई है। द हिंदू अखबार की बात करें तो एक खबर लगाई है अखबार ने कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑल ऑफिसर्स टू टर्न अप फॉर मोदीज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। जब वो भाषण देंगे तो उस दिन सभी अधिकारियों को मौजूद रहना पड़ेगा। और ये बड़ा उस पत्र की कॉपी भी तस्वीर उस कॉपी की तस्वीर भी लगाई है अखबार ने। निलंबन से बौखलाई कांग्रेस का धरना, ये हेडिंग दी है जनसत्ता अखबार ने। पाक सैनिकों की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत, जनसत्ता लिखता है। जनसत्ता अखबार की एक बॉटम खबर है और बड़ी बढ़िया खबर है कि फावड़े तक नहीं उठे, कागजों में हो गया काम, अमेठी में मनरेगा के नाम पर घपलेबाजी, 27 करोड़ फर्जी तरीके से निकाले। तो ये एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है एक तरह से ये जनसत्ता अखबार की। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा है कि ट्रेनों में भिखारी करेंगे बेटी बचाओ अभियान का प्रचार।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए समीर आपका। और अब समय है विशेष रिपोर्ट का। पंजाब की अकाली दल की सरकार ने हाल ही में देश के विभिन्न जेलों में बंद पुराने अलगाववादियों को रिहा करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। सरकार के इस कदम के बाद विपक्ष ने अकाली दल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर अलगाववादियों को राज्य में गोलबंद होने का मौका मिलेगा। पंजाब से लौटकर आए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की ये रिपोर्ट।
साधु संतों, पीर फकीरों और हरित क्रांति की धरती पंजाब 2 दशकों से भी ज्यादा के बाद अब वापस अपनी पुरानी धुन पर लौट रहा है। लहलहाते खेतों से गुजरते हुए दूर कहीं पंजाबी लोक गीत की धुन आज भी माहौल में रोमांच भर देती है। मगर हाल ही में गुरदासपुर के दीनानगर में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर सबको झकझोर कर रख दिया है। कई दशकों के बाद अचानक हुए इस हमले ने लोगों को एक बार फिर दहशत में तो डाला ही, मगर सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या इस घटना ने आतंकवाद की वापसी के संकेत तो नहीं दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अलगाववादी शक्तियां सरहद के उस पार से सक्रिय हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार का आरोप है,
भिंडरांवाला जो टाइगर फोर्स है, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, वहाँ 130 के करीब पंजाब के जो हमारे बहका करके लोगों को लेके गए हुए हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं कैंपों में, उनको यहाँ गाइड के रूप में भेजा जा रहा है, तो वो गाइड के रूप में यहाँ आ रहे हैं और पंजाब सरकार को कोई होश नहीं है।
मगर विशेषज्ञों को लगता है कि फिलहाल ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि खालिस्तान की मांग करने वाले संगठनों का बचा हुआ नेतृत्व सरहद के पार ही शरण लिए हुए है। रक्षा मामलों के जानकार अजय साहनी कहते हैं,
खालिस्तानी बेशक पाकिस्तान में आज तक मौजूद है, उनकी जो टोटल जो सर्वाइविंग लीडरशिप है उसको वहाँ पे रखा गया है, कार्डर्स को रखा गया है, इन दी एक्सपेक्टेशन एंड होप दैट दे विल बी एबल टू रिवाइव अ मूवमेंट इन पंजाब, लेकिन ऐसी कोई उनकी पंजाब में इनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही है।
लेकिन हाल ही में राज्य के सत्तारूढ़ अकाली दल ने केंद्र सरकार को 30 ऐसे पुराने खालिस्तानी नेताओं की सूची सौंपी है जो देश की विभिन्न जेलों में बंद हैं। पंजाब की सरकार ने इन सभी की रिहाई की मांग की है। इसके अलावा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी 120 ऐसे कैदियों की लिस्ट सरकार को सौंपी है। पिछले महीने तिहाड़ जेल से खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के दविंद्र सिंह भुल्लड़ को अमृतसर स्थानांतरित किया गया तो विपक्ष ने प्रकाश सिंह बादल की सरकार की खूब आलोचना की। कांग्रेस ने तो सरकार पर अलगाववादियों को महिमा मंडित करने का भी आरोप लगाया है।
तो यहाँ यादगारें बन रही है, ये पूरे देश को पता है, पूरी होम मिनिस्ट्री को पता है, राह को पता है, इंटेलिजेंस को पता है, सभी को पता है कि यहाँ 200 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है आतंकवादियों की यादगारें बनाने के लिए। तो ये पंजाब सरकार कर रही है इसके लिए, और हर साल उसके मेले करती हैं, उनको शहीद कहती हैं, उनको सम्मानित करती हैं।
किसी जमाने में खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े रहे और अब राजनीतिक संगठन यूनाइटेड अकाली दल के नेता वसंत सिंह जफरवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है,
कम पंजाब ये जिहड़ी अकाली सरकार है इन्हां बिल्कुल ये काम नहीं कीता, ये कुर्सी उत्ते बैठ के जिन्हां मोर्चे नाल आया सी।
वसंत सिंह कह रहे थे कि अकाली दल भी सिखों के वोटों से सरकार बनाती आ रही है मगर उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। अकाली दल पर आरोप है कि उसने हमेशा अलगाववादियों के प्रति अपना रुख नरम रखा है और अजय साहनी का कहना है कि हर चुनाव से पहले पार्टी इस तरह के शोशे छोड़ती रहती है।
तो अकालियों ने हर वक्त ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेली है और ये एक सॉफ्ट खालिस्तानी लाइन हर इलेक्शन से पहले लेते हैं, क्योंकि इनका जो खासकर शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी का जो इलेक्शन होता है वो तो कम्प्लीटली सॉफ्ट खालिस्तानी लाइन पे चलता है, ये इनका नेचुरल इलेक्टोरल बेस है। एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा तो ये इसने पहले भी ये अकाली पॉलिटिक्स ही ने दिया था, पूरा बेस खालिस्तानी आइडियोलॉजी का अकाली पॉलिटिक्स से उभरा हुआ है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का और जो सो कॉल्ड देवबंदी मदरसे पाकिस्तान में है उनका जो लिंक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म से है वही अकाली पॉलिटिक्स का लिंक खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म।
मगर कट्टरपंथी माने जाने वाले संगठन दल खालसा के कंवरपाल बिट्टू ने अकाली दल का बचाव करते हुए कहा,
एज अ स्टेट होता है ना कि अकाली दल होता है, बीजेपी भी बीच में ही बैठी है, बीजेपी के ऑफिसर भी मीटिंग्स में होते हैं, तो जो भी डिसीजन होता है वो स्टेट के इंटरेस्ट को देखकर करते हैं, उस कोई सॉफ्ट नहीं है, कोई उनके पास एक ऐसा कुछ नहीं है कि वो हम दे आर वेयरिंग वेलवेट ग्लव्स फॉर अस। अकाली दल ने बार बार घूम कर आना तो सिखों के घरों में ही है ना वोटर लेने, हैं भी वो जो अकाली दल में मिनिस्टर या जो छोटे जो उनके सेकंड थर्ड रैंक के लीडर्स हैं तो हमारे घरों के ही, ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने घर में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस गाँव में वापस आना है, लोगों को मुँह दिखाना है, तो इतना वो ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसा गलत ना करें, कुछ इतनी दूर ना चले जाएं कि हमें ये लोग अपने घरों में भी अंदर आने से भी रोकें।
पंजाब में शांति बहाल करने में कई साल लग गए और जानकारों को लगता है कि इस राज्य में दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो अब खालिस्तान और अलगाववाद से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, जैसे कि नशाखोरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। उन्हें लगता है कि अगर इन बुनियादी मुद्दों पर काबू पा लिया गया तो पंजाब एक बार फिर खुशहाल हो जाएगा। सलमान रावी, बीबीसी अमृतसर।
आपको सलमान रावी की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर लिखेगा। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के पास कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। भारत प्रशासित कश्मीर में सेना के दो गश्ती दलों के बीच गलतफहमी की वजह से हुई मुठभेड़ में कम से कम दो भारतीय जवानों की मौत हो गई है। झारखंड के जमशेदपुर में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 26 बच्चे बीमार हो गए हैं। इसराइल में अधिकारियों ने पहली बार किसी यहूदी संदिग्ध को प्रशासनिक हिरासत में लिया है और बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। इसी के साथ नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।